दिन भर तारीख 7 जुलाई दिन मंगलवार। मैं हूं विनीत खरे। शिवराज ने की व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश।
मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूं और माननीय हाई कोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूं कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें।
सीबीआई जांच की मांग को नकारने के बाद आखिर क्यों हुई सरकार राजी? जानेंगे कौन थे व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर्स। फ्रांस ने कहा ग्रीस को यूरोजोन में रखने के लिए हर संभव प्रयास। बंटवारे के दौरान मुस्लिम बहुल मलेरकोटला कैसे रहा हिंसा से परे? और लंदन बम हमले के 10 साल पूरे होने पर ब्रिटेन में प्रार्थना सभाएं।
Lot of sadness, a lot of unfulfilled dreams.
इन 10 सालों को मैंने अकेलेपन, दुख और अवसाद के साथ बिताए हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार फैसल मोहम्मद अली से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवेश परीक्षा और नियुक्तियों में भर्ती घोटाले में सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश की है। इस घोटाले से, जिसे व्यापम के नाम से भी जाना जाता है, जुड़े दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है जिन्हें संदिग्ध बताया जा रहा है। इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जानी है, जिसकी सुनवाई कल होनी थी। उत्तरी नाइजीरिया में अधिकारियों का कहना है कि जारिया शहर में हुए संदिग्ध आत्मघाती हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है और काफ़ी घायल हैं। धमाका एक स्थानीय सरकारी भवन में हुआ जहां अधिकारी और प्राथमिक शिक्षक जमा थे। पिछले हफ्ते मुल्क में हुए हमलों में 200 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। ग्रीस में जारी आर्थिक संकट को लेकर ब्रसेल्स में एक बैठक हो रही है जिसमें ग्रीस को कर्ज वापसी पर एक नई योजना पेश करनी है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने उन अटकलबाजियों पर रोक लगाने को कहा है जिनमें ग्रीस को यूरोजोन से बाहर किए जाने की बात कही जा रही है। उधर यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने कहा, मामला पूरी तरह से ग्रीस के हाथ में है। आज रात ब्रसेल्स में ग्रीस को बताना होगा कि वो इस मामले में आगे क्या करना चाहता है। यूरोपीय संघ और उसके अध्यक्ष इस मामले के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यूरोपीय संघ के अधिकारी के शब्द। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख फेडरिका मोगेरेना ने कहा कि परमाणु समझौते पर ईरान से बातचीत तय सीमा के बाद भी जारी रहेगी। इस मामले में समय सीमा आज रात खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में विश्व की 6 शक्तियों और ईरान के बीच वियना में बातचीत अगले 2-3 दिनों और चलेगी। इससे पहले अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी कह चुके हैं कि अगर ईरान जिद पर अड़ा रहता है तो अमरीका बैठक से अलग हो जाएगा। मोरक्को में निर्लज्जता के आरोप झेल रही दो औरतों का अदालत में बचाव करने के लिए सैकड़ों वकील आगे आ रहे हैं। इन दोनों पर बहुत तंग लिबास पहनने का आरोप है जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लोगों ने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ गाली गलौज करने लगे और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा था। एक स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर की आकस्मिक स्थितियों से निपटने में असक्षम है। यह रिपोर्ट इबोला वायरस पर तैयार की गई है। डेम बारबेरा का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस खतरनाक बीमारी से लड़ने में नाकाम रहा है। इस वायरस से विश्व भर में अब तक 11,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे जाने वाले लोगों में अधिकतर पश्चिमी अफ्रीका के थे। मध्य चीन में अधिकारियों ने रसायन के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है जिन पर गैर कानूनी तौर पर ड्रग का कारोबार करने का आरोप है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिनभर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। नियुक्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली से जुड़े इस घोटाले के सिलसिले में हाल के दिनों में कई लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य की भाजपा सरकार भारी दबाव में थी। लेकिन हाल में एक पत्रकार की मौत के बाद सरकार पर दबाव काफी बढ़ गया था। भोपाल से शुरेन नियाजी की रिपोर्ट।
व्यापम घोटाले में लगातार हो रही मौतों को लेकर चौतरफा हमले का सामना कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार व्यापम मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए अपनी हामी भर दी है। मंगलवार को उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वो हाईकोर्ट को पत्र लिखकर अनुरोध करेंगे कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोग सच जानना चाहते हैं और अब यह आवश्यक हो गया है कि सभी संदेहों को दूर करने के लिए मामले की सीबीआई द्वारा जाँच की जाए।
मैं हाई कोर्ट का आदर करता हूं, न्याय व्यवस्था में पूरी पूरी आस्था जताता हूँ और जांच पर भी मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जैसा वातावरण बना, विशेषकर दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मृत्यु हुई, हमारे एक पत्रकार मित्र को भी हमने खोया, उसके बाद से लगातार ऐसा वातावरण बना हुआ था कि जांच आखिर सीबीआई से क्यों नहीं। मेरा उत्तर था पहले कि सीबीआई को सीधे जांच देने का अधिकार मेरा नहीं, राज्य शासन का नहीं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है, उनका फैसला था कि सीबीआई को जांच देने का उचित नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, जो सवाल उठाए गए उनका समाधान जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि जनता के मन में भी सवाल खड़े हुए, प्रदेश के बाहर ज्यादा सवाल खड़े हुए, जनता जानना चाहती कि आखिर क्या है, और इसलिए मैं जनमत के आगे शीश झुकाता हूँ और माननीय हाईकोर्ट को एक अनुरोध पत्र भेज रहा हूँ कि व्यापम मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कृपा करें।
विपक्षी कांग्रेस पार्टी लगातार मुख्यमंत्री और उनके परिवार को इस घोटाले से जोड़ती रही है। चौहान ने कहा कि कांग्रेस को जांच से कोई लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ एकमात्र काम है उनकी छवि खराब करना। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की कोशिश की है।
प्रतिपक्षी मित्रों ने सवाल उछाले थे, मुझ पर आरोप लगाए गए, बेबुनियाद आरोप लगाए गए, उनका व्यापम की जांच से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस के मित्रों का, उनको जो मृत्यु हुई है उससे कोई लेना देना नहीं है, उनका एकमात्र मकसद था शिवराज को घेरो, इसे चैन से काम मत करने दो, आरोप मढ़े जाओ, प्रतिमा खंडित करो, छवि खराब करो।
फिलहाल इस मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी कर रही है। उधर विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान को हाईकोर्ट के बजाय सीबीआई जांच का पत्र केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को लिखना चाहिए। कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस 16 जुलाई को प्रदेश बंद रखेगी। उन्होंने मांग की कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए। वहीं अब तक मौतों के लिए शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार बताते हुए कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की भी मांग की है।
ये थे भोपाल से पत्रकार शुरेन नियाज़ी। कल तक जहां मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से आवाजें आ रही थीं जिनमें सीबीआई जांच की मांग से इनकार किया जा रहा था, लेकिन एकाएक सीबीआई जांच की मांग को मान लेना, आखिर राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया, यही सवाल रखा मैंने भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी के सामने।
चौतरफा दबाव में आ गए थे मुख्यमंत्री। पिछले कुछ दिनों से जो मौतों की खबर सामने आई है उससे बीजेपी को जो है पॉलिटिकल फ्रंट पे ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि इससे जो रोजाना का जो डेंट लग रहा है पार्टी को, असल में क्या है कि शिवराज सिंह चौहान में मध्य प्रदेश में मासेस के लीडर माने जाते हैं और इससे जो है काफी नुकसान हो रहा था। और आप अगर हम लोग यहाँ संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की, उसमें जो बॉडी लैंग्वेज था वही अपने आप में बता रहा था कि वो दबाव में है। उन्होंने एक लाइन बोली थी चलते चलते कि भाई ये इसकी जो इंक्वायरी है वो मैंने ही इनिशिएटिव लिया और मैंने ही इसकी जांच गहराई से कराई है और अब इसका जो भी नतीजा आएगा उसको मैं भुगतूंगा। तो माने इसका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है वो इस चीज को समझ रहे हैं। मंडे को देश के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह झाबुआ में थे, मध्य प्रदेश के झाबुआ में, जहां वो मेघनगर में आज तक के रिपोर्टर की डेथ हुई थी, वो एक छात्र थी नमिता डामोर, उसके घर पर वहां वो गए थे दिलीप सिंह भूरिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उन्होंने वहां पर ये कहा कि भाई सीबीआई इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, रात भर में मुख्यमंत्री ने चिंतन किया और उन्होंने आज इस बात को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जाहिर भी किया कि भाई ये लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है और लोकलाज की चिंता माने पब्लिक में जो परसेप्शन है वो बिगड़ रहा था
जी। और ये जो उमा भारती का वक्तव्य आया है जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही है, कहा है लोग डरे हुए, ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनल पार्टी डिसेंशन है, आपसी गुटबाजी है, इसका भी एक कारण हो सकता है।
नहीं नहीं, ये फैक्टर है, ये तो बिल्कुल है फैक्टर। पार्टी में अंदरूनी स्तर पे एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये परोक्ष रूप से ये इनडायरेक्ट ये चाह रहा था कि भाई इसका निराकरण होना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अल्टीमेटली इससे नुकसान जो है बीजेपी को हो रहा था।
राजनीतिक तौर पर ये जो पूरा व्यापम घोटाला कहा जा रहा है जिसे, इससे उनकी छवि को, उनकी जो उनकी पॉलिटिक्स है, राजनीतिक छवि, उनकी राजनीति को कितना बड़ा धक्का या नुकसान पहुंचा है अभी तक?
जो आरोप लगे हैं इस घोटाले को लेकर के वो आरोप जो है मुख्यमंत्री के घर तक गए हैं, माने उनके फैमिली को भी उसमें शामिल किया गया है, उनके जो सेक्रेटरियट के लोग हैं वो भी उनपे भी चार्जेस हैं। तो और ये तो खुद उमा भारती ने भी कहा है कि भाई मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी उसमें उसका नाम है। सीबीआई जांच अगर मंजूर होती है और फिर उसमें क्या तथ्य निकल कर आते हैं तो जांच कब तक चलेगी, कब तक क्या होगा, कौन कौन से नए तथ्य आएंगे, नई जानकारियां आएंगी, उस पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस को या अपोजिशन को कितना फायदा पहुंचता है और जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी उसको कितना नुकसान होता है।
भोपाल से ये थे राजेश चतुर्वेदी। हर बड़े कांड के बाद सीबीआई की जांच की मांग तो होती है, लेकिन जांच एजेंसी कई मामलों में खरा उतरने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ सीबीआई पर सरकार के दबाव में आने के आरोप लगते रहे। 2 साल पहले कोयला घोटाले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोते की तरह है। अदालत के कहने का मतलब था कि प्रमुख जांच एजेंसी सरकारी कंट्रोल में है। अदालत ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि वो इसकी आजादी को बहाल करने के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाए। तो क्या सीबीआई व्यापम घोटाले और इससे संबंधित संदिग्ध हत्याकांडों की गुत्थी को सुलझा पाएगी? हमारे साथी जुबैर अहमद ने सीबीआई के एक पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सेन से यही सवाल पूछा।
देखिए, सीबीआई में कैपेसिटी तो है, सीबीआई सेपरेट टीम बना के ओवरऑल किसी सुपीरियर स्पेशल डायरेक्टर के अंदर रख के ये इन्वेस्टिगेशन सॉल्व कर सकती है। पर आजकल सीबीआई पर लोगों का भरोसा चला गया क्योंकि सिन्हा साहब के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एपी सिंह के खिलाफ चार्जेस हुए, यूपी से हटाए गए, ये कभी पहले तो होता नहीं था। डायरेक्टर से मैंने हाई इंटीग्रिटी जो बनाई है मेथड ऑफ सिलेक्शन, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं ये नहीं मानता कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कोई कोर्ट मॉनिटर करे।
ऐसा क्यों?
क्योंकि सीबीआई में अपने प्रोफेशनल से कोर्ट को प्रोसिक्यूशन ट्रायल समझ में आती है, कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन समझ में नहीं आती। देखिए, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन मिलते हैं ट्रायल के टाइम। अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलिए और सीबीआई के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट का जज काम करने दे, तभी ठीक हो सकता है। इसलिए सीबीआई के ऊपर केस दे देना चाहिए, सीबीआई को बिना इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन करने देना चाहिए। सीबीआई इज एन ओपन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर सीबीआई किसी को अरेस्ट करती है तो उसके बारे में सीबीआई को फॉर्टनाइटली ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट देनी पड़ती है कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है। उस टाइम कोई भी प्रोसिक्यूटर या कोई भी जो इंटरेस्टेड पार्टी वो वॉच कर सकती है, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में अगर कमियां पाती है तो उसको सीबीआई के सामने रख सकती है। बॉम्बे ब्लास्ट सीबीआई ने विदाउट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग, इतना बड़ा केस था, द बिगेस्ट ट्रायल इन एवर अकरिंग इन सीबीआई, ओवर 133 लोग के अरेस्ट हुए और सारी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अपने टीम की 18 चार्जशीट डाले, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कहाँ थी?
ये तो एक हो गई आइडियल सिचुएशन, जो आप भी जानते हैं कि आपके खुद अपनी किताब में ये कहा है कि सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं रही। पहले के अफसर दबंग होते थे, अब वह प्रेशर में आ जाते हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत बढ़ा है पिछले कुछ सालों में।
पहले के अफसर तो ज्यादा दब सकते थे क्योंकि उनके उनकी जो टेन्योर था वो एश्योर्ड नहीं था। उनका टेन्योर जब तक एक चाहती थी गवर्नमेंट नेताजी रख सकते थे
जी।
अब तो टेन्योर एश्योर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने ही आपके एक केस में सिंगल डायरेक्टिव का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया जिस डायरेक्टर का टेन्योर 2 साल का होगा, पर चॉइस ठीक नहीं हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 साल 2.5 साल पहले एक ऑब्जर्वेशन किया था सीबीआई के बारे में कि ये एक ऐसे तोते की तरह जो पिंजरे में बंद है। ऑब्वियसली
सीबीआई को केज पैरेट कहा गया है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा गया है, करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा गया है। ये इसीलिए कहा गया है कि सीबीआई के डायरेक्टर्स ठीक नहीं लगे। आप 98 के पहले की बात सोचिए, कभी भी किसी सीबीआई डायरेक्टर पर चार्ज आया था?
ये थे सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सेन। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश का दौरा करके वापस लौटे हैं, जहां उन्होंने उन विसल ब्लोअर से बात की जिन्होंने इस घोटाले पर से पर्दा उठाया। नितिन ने मुझे इन लोगों के बारे में बताया।
2 किस्म के लोग हैं। एक उस तरह के लोग हैं जो ऐसे विसल ब्लोअर्स हैं जिन्होंने जिनके हाथ कुछ ऐसी चीजें एकाएक बिना किसी एफर्ट के लग गई और वो एक बड़ा मामला बन गया। उस कैटेगरी में आने वाले लोगों में से हैं प्रशांत पांडे, जो इंदौर के हैं, टेकी हैं, बहुत बड़े आसान भाषा में कहें तो हैकिंग करने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, और बुरे कारणों में नहीं, क्योंकि उनको राज्य की जो तमाम सुरक्षा एजेंसीज थी उन्होंने उनकी मदद ली थी। एक ज़माने में व्यापम की जांच शुरू हुई थी तो प्रशांत पांडे लोगों के कंप्यूटर ड्राइव से डेटा निकाल कर देते थे। एक तो प्रशांत पांडे हुए जिनके हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज कंप्यूटर्स पे एक्सेल शीट्स लगी जिसमें तमाम बड़े लोगों के नाम थे। दूसरे तरह के लोग पारस सकलेचा तरह के लोग हैं, उम्रदार व्यक्ति हैं, 50-55 वर्ष के, और एक बार विधायक रह चुके हैं, रतलाम के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे, टीचर हैं पेशे से। वो पिछले 8 साल से विधानसभा में ये चिल्लाते रहे हैं कि प्रदेश में जो मेडिकल एंट्रेंस हो रही है उसमें तमाम तरह की धांधलियाँ हो रही हैं। हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं, विधानसभा के कागजात हैं जिसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं, उन्होंने सवाल केंद्रित किए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। शिवराज सिंह चौहान ने खुद 2012 और 13 में विधानसभा में ये कहा कि फला फला दिन मुझसे पारस सकलेचा ने ऐसे सवाल पूछा, तो उसमें हम जाँच कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तीसरे जो विसल ब्लोअर हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, आशीष चतुर्वेदी उनका नाम है, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, 19 वर्ष के थे, ग्वालियर के एक अस्पताल में अपनी कैंसर से पीड़ित माँ के इलाज के लिए पहुँचे। 2-4-5 महीने अस्पताल में उन्होंने देखा तो उनको तो लगा कि तमाम ऐसे डॉक्टर हैं यहाँ जिनको तो डॉक्टरी की ABCD नहीं आती है, ये थोड़े पढ़े लिखे हैं। उसके बाद उन्होंने लोगों से जानकारी जुटानी शुरू की, लोगों से बात करनी शुरू की, तो एक डॉक्टर उनको ऐसे मिले जिनसे उनकी दोस्ती हो गई, उनके कंधे पे हाथ रखकर उन्होंने पूछा दोस्त की हैसियत से, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो यार पता नहीं है, मैं तो ग्वालियर में बैठ के बैक टू बैक फिल्मों के शो देख रहा था और दिल्ली में मेरे लिए परीक्षा कोई दे रहा था। तो जब उन्होंने इस तरह का जवाब दिया तो आशीष चतुर्वेदी के मुताबिक उनका जो 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 उनके जो शक थे वो सच होने लगे, और उसके बाद आशीष चतुर्वेदी ने उन तमाम ऐसे लोगों से साठगांठ की, दोस्ती की जो कोई इम्पर्सोनेटर यानी दूसरे की जगह जाके फर्जी फोटो चिपका के, मान लीजिए परीक्षा देने आपको जाना है, आपकी जगह दूसरे की फोटो लगा दी जो जिसको महारत हासिल है मेडिकल का एग्जाम क्लियर करने में, इस तरह के तमाम फर्जीवाड़े हुए। सबसे खास बात मुझे लगी, लगभग सभी लोगों से मेरी बात हुई है, ये सारे मिल के काम कर रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं कह रहा है, या आनंद राय है जैसे इंदौर में है, पेशे से डॉक्टर है, उन्होंने सबसे पहले कहा साहब यहाँ धांधलियां ड्रग ट्रायल्स में हो रही है, दवाओं के परीक्षण में धांधलियां हो रही है। उससे करते करते उन्होंने इंदौर में खबर दी पुलिस वालों को एक बार कि PMT परीक्षा होने वाली है, और तमाम इंदौर के होटलों में दुनिया भर से सॉल्वर्स आ गए हैं, उत्तर प्रदेश तक से, जो लोग परीक्षाओं को सॉल्व करने में महारथी होते हैं। उसके बाद छापे पड़े और 100 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो बड़ा दिलचस्प, ये मतलब ये समझिए कि बॉलीवुड फिल्म कि पूरी कहानी है ये, चार जो विसल ब्लोअर्स हैं इनके साथ समय बिताना।
व्यापम घोटाले पर ये थे नितिन श्रीवास्तव। BBC हिंदी सेवा में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर, मैं हूं विनीत खरे, और अब बात ग्रीस संकट की। फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने कहा है कि फ्रांस ग्रीस को यूरोजोन के भीतर रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। फ्रांस के रेडियो स्टेशन RTL से बात करते हुए मैनुअल वॉल्स ने समाधान निकलने की उम्मीद जताई।
La France est convaincue que nous ne pouvons pas prendre le risque d'une sortie.
France इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम यूरोजोन के ग्रीस से ग्रीस के बाहर जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके आर्थिक कारण तो है ही, लेकिन उससे बड़े हैं राजनीतिक कारण। ये यूरोप की बात है। ये थे फ्रांस के प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स। यूरोजोन वित्त मंत्रियों के गुट के प्रमुख जेरुविन जेसल ब्लूम ने कहा है कि ग्रीस के वित्तीय संकट को सुलझाने के लिए नए प्रस्ताव पेश करने की जिम्मेदारी ग्रीस की है, और ग्रीस के विवादास्पद पूर्व वित्त मंत्री यानिस वारूफाकिस के इस्तीफे के बाद स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।
In my mind, it's not about persons, it's about where we stand politically after the no referendum.
जेरेमी जेसल ब्लूम कह रहे थे कि ये मुश्किल स्थितियां है, लेकिन ग्रीस की सरकार के जो नए प्रस्ताव हैं उसका हम इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये प्रस्ताव हमें आज मिल जाएंगे और तब देखा जाएगा कि वो कितने विश्वसनीय हैं। सीधे चलते हैं ग्रीस की राजधानी एथेंस, जहां से पत्रकार इरफान तैमूर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। इरफान, ग्रीस के लिए बड़ी चुनौती का दिन है। प्रधानमंत्री, जैसा कि आपने सुना, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, ग्रीस ने क्या प्रस्ताव पेश किए हैं ब्रसल्स में जो यूरोजोन के देश हैं उनके सामने?
जी, मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि अभी जो यूरो ग्रुप का अजलास वो 2 बजे शुरू हुआ था यूनानी टाइम के मुताबिक, अभी तक जारी था। अभी कुछ चंद लम्हे पहले ही वो अजलास मुकम्मल हुआ है, तो अभी देखते हैं कि जो यूरो ग्रुप के जो चेयरमैन हैं डाइसल ब्लूम वो क्या बयान देंगे। तो आपको बताता चलूं कि यूरो ग्रुप का जो इजलास जारी था, इसमें नए वजीर खजाना यूनान के जो मिस्टर चाकोलोटोस हैं वो नई तजावीज और प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि और उम्मीद ये की जा रही है कि ये कुछ ना कुछ मामला तय पा जाएंगे।
जी ग्रीस के प्रधानमंत्री, जैसा कि आप बता रहे थे एलेक्सिस सिप्रस, वो इस वक्त ब्रसल्स में हैं, वो प्रस्ताव पेश करेंगे। ग्रीस की एथेंस की बात बताएं, वहां पर बैंक बुधवार तक बंद रहेंगे, वहां माहौल कैसा है और लोग कितनी उम्मीद से ये जो बैठक चल रही है ब्रसल्स में, एक तरफ यूरोजोन के देश के नेता हैं और दूसरी तरफ ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रस हैं, कितनी उम्मीद के साथ देख रहे हैं?
जी मैं यूनान की सूरत हाल बताने से पहले, आपको जानकारी देने से पहले ये बताना चाहूंगा कि जो यूनान के वजीर आजम अलेक्सिस चिपरास हैं वो इस टाइम ब्रसल्स में मौजूद हैं। अभी यूरो ग्रुप का जो इजलास था उसमें जितने भी 18 मेंबर ममालिक हैं यूरो ग्रुप के, जो करेंसी के मेंबर ममालिक हैं, उनके वजीर खजाना शामिल थे और उस पर वो बातचीत चल रही थी। अभी शाम को जो सरबराहन इजलास जो होगा जिसमें वजीर आजम यूनान अलेक्सिस चिपरास है, उनकी तरफ से एक तजवीज सामने ही है कि पहले मुझे 7 बिलियन यूरो की जो रकम है जो हंगामी समझौते की तरह में वो अदा की जाए ताकि ग्रीस जो किसी सूरत में दिवालिया ना हो। और मैं अब आपको सूरत हाल की तरफ जाता हूँ कि यूनान में बैंक बंद है, उसके बाद सरकारी इदारों में काम बिल्कुल नहीं हो रहा और एक हैजान की कैफियत है, हर चीज साकत हुई है, ट्रैफिक नहीं है ज्यादा, रोड जो है एम्प्टी है और उसके साथ साथ जितने भी फॉरनर हैं यहाँ पर बसने वाले हैं, पर इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, अरब कंट्रीज के हैं, बांग्लादेश के हैं, उनमें एक खौफ पैदा शुरू हो गया है इसलिए कि कोई लोग भी ना कोई पैसों की जो उनकी कैश उसकी ट्रांसमिशन हो सकती है और उसके साथ साथ ना वो टिकट खरीद कर अपने अपने वतनों को वापस जा सकते हैं क्योंकि एयरलाइंस जो है वो ज्यादा जो एयरलाइन इंटरनेशनल है वो बाहर की है।
बहुत शुक्रिया, ये थे एथेंस से पत्रकार इरफान तैमूर। लंदन में 10 साल पहले हुए श्रृंखलाबद्ध धमाकों में मारे गए 52 लोगों को आज पूरे ब्रिटेन में याद किया जा रहा है। 3 धमाके लंदन की भूमिगत ट्रेन में हुए थे जबकि 1 धमाका डबल डेकर बस पर हुआ था। दुर्घटना में बचे लोग और मारे गए लोगों के परिजन सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च में इकट्ठा हुए और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। एक रिपोर्ट के साथ समीर आत्मज मिश्र।
पूरे ब्रिटेन में आज लोग उन 52 लोगों को याद कर रहे हैं जो 10 साल पहले लंदन में हुए श्रृंखलाबद्ध धमाकों में मारे गए थे। 10 साल पहले आज ही के दिन लंदन में हुए इन धमाकों ने न सिर्फ ब्रिटेन को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। ब्रिटेन के सार्वजनिक परिवहन को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों में 3 भूमिगत ट्रेनों और 1 बस पर हमला किया गया। धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और लंदन के मेयर ने भी हाइड पार्क में बने स्मारक पर जाकर उन्हें याद किया। 10 साल पहले की घटना को याद करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि वो घटना आज भी हमारे जहन में ताजा है, लेकिन हम किसी भी चरमपंथी कार्रवाई से डरने वाले नहीं। One of those days where everybody remembers exactly where they were when they heard the news. ये धमाके अलकायदा से जुड़े आत्मघाती हमलावरों ने किए थे और ब्रिटेन के इतिहास की ये सबसे बड़ी चरमपंथी घटना थी। गिल क्लिक्स भी उस दिन ट्रेन में सफर कर रही थीं और वो उसी डिब्बे में थीं जहां 4 आत्मघाती हमलावरों में से एक मौजूद था। धमाके में उनके दोनों पैर चले गए। बीबीसी से बातचीत में उस सुबह को याद कर वो दहल जाती हैं।
I left the house late. I forgot my travel card, so I had to buy another card.
उस दिन मैं घर से देर से निकली थी। मैं अपना ट्रेवल कार्ड भूल गई थी, इसलिए मैंने एक दूसरा कार्ड खरीदा। देरी के कारण मुझे ट्रेन बदलनी पड़ी, जो कि अक्सर मैं नहीं करती थी। मुझे किंग्स क्रॉस में दूसरी ट्रेन लेनी पड़ी और फिर जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। गिल क्लिक्स के शब्द। 7 जुलाई 2005 को सुबह 8:50 पर भूमिगत ट्रेन में 3 धमाके हुए।
There are 2 trains stuck in tunnels at Edgware Road and it's not known if they've collided or where the passengers.
रसेल स्क्वायर में 26 लोगों की मौत हुई। एडगवेयर रोड में 6 और एल्ड गेट में 7 लोग मारे गए। करीब 1 घंटे के बाद ही टेवी स्टॉक स्क्वायर में एक डबल डेकर बस में धमाका हुआ और 13 लोगों की मौत हो गई। टेवी स्टॉक स्क्वायर के पास बस में हुए धमाके में एंथनी फताई विलियम्स भी मारे गए थे। उनकी माँ मेरी उन्हें याद करते हुए कहती हैं।
लोनलीनेस, लॉट ऑफ सैडनेस, अ लॉट ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स।
इन 10 सालों को मैंने अकेलेपन, दुख और अवसाद के साथ बिताए हैं। हर पल अपने बेटे की बातें, उसकी मुस्कान, उसकी हरकतें याद आती हैं। मेरे ऊपर इससे बड़ी मुसीबत कभी नहीं आ सकती। धमाकों में 700 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। धमाकों के बाद मारे गए सभी 52 लोगों के नाम सेंट पॉल्स चर्च में पढ़े गए और उन्हें याद किया गया। एक दशक बाद आज ब्रिटेन के लोगों को इस घटना की यादें फिर से ताज़ा हो गईं।
बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों के सार के साथ ये थे समीर आत्मज मिश्र। पूरे भारतीय पंजाब में सिर्फ मलेरकोटला ऐसा शहर है जहां आज भी मुसलमान बहुतायत में है। बंटवारे के समय जब पूरा उत्तरी भारत हिंसा की चपेट में था, तब भी मलेरकोटला में शांति बनी रही और वहां के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मलेरकोटला इतनी हिंसा के बाद भी सौहार्द का प्रतीक बना रहा? सुहेल हलीम की रिपोर्ट।
मलेरकोटला में चारों तरफ आलीशान मस्जिदें और पुरानी इमारतें हैं जो एक गुजरे हुए दौर की याद दिलाती हैं। लेकिन जब बाकी पंजाब में बहुत सी मस्जिदें आज भी वीरान पड़ी हैं, तो मलेरकोटला जैसे छोटे से शहर में क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि देश के बंटवारे के वक्त मलेरकोटला खून खराबे से बचा रहा और वहां के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। मोहम्मद खलील एक सरकारी स्कूल में टीचर है।
सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके छोटे साहबजादे, जब उनको सरहंद में दीवारों में चिनवाया जा रहा था, तो मलेरकोटला के नवाब ने उनके हक में आवाज़ बुलंद की थी और ये बात सिखों को बहुत जची। वो ये समझ लीजिए कि इसके एहसान के तले दबे हुए हैं, ये बात को मानते हैं वो कि मलेरकोटला की हदूद में जो भी आ गया वो बच गया और यहाँ से कोई नकले मकानी करके भी नहीं गया।
बात 1705 की है, जब मुल्क पर मुगलों की हुकूमत थी। माना जाता है कि उस वक्त नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी और तब से ही सिख कौम उनका एहसान मानती है। सिखों ने नवाब शेर मोहम्मद खान की याद में एक गुरुद्वारा भी बनाया है जिसे हाका नारा या सच्चाई की आवाज का नाम दिया गया है। पंजाब के स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अजीत सिंह कहते हैं कि सिख कौम नवाब शेर मोहम्मद खान की शुक्रगुजार है, उन्होंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई थी और ये गुरुद्वारा इस बात का प्रतीक है कि हमें वो बात अब भी याद है।
नवाब साहब ने हरा नारा मारा सी, तुसी इन मासूम बच्चों तो की लेना, ये गुरुद्वारा हरा नारा ये इस गल का प्रतीक है तो असी सारे रल के गल मानते हैं, अज भी साढ़े वो गल याद आ।
मोहम्मद खलील कहते हैं कि इतने बड़े राज्य में यूं तनहा रहना आसान नहीं, लेकिन अब वो अकेलापन बाकी नहीं जो पहले महसूस होता था।
जब हालात नासाजगार हुए इधर भी और उधर भी दोनों जानिब, उधर से लोग नकले मकानी करके इधर आ गए हिंदू सिख, इधर से मुसलमान वहां चले गए, लेकिन मलेरकोटला बचा रहा। मलेरकोटले के लोगों ने पहले तो ये सोच थी हमारी कि हम यहाँ रह गए, हमारे सभी भाई बंधु उधर चले गए हैं हम यहाँ, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब हम खुशी महसूस करते हैं।
स्थानीय बिजनेसमैन मोहम्मद यासीन खालिद कहते हैं कि मलेरकोटला सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है।
नहीं ऐसा है जी, अब लोगों में भाईचारा बढ़ गया है, प्यार बढ़ गया है, हम लोगों के आपस में तलका बहुत बहुत हो गया है। आप यहाँ 2 महीने रह के, ये रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, अब कुछ दिन यहाँ ठहरे, अफ्तारियाँ होंगी, 30% 35% 40% आपको गैर मौसम मिलेंगे अफ्तारी में। गैर मौसम हमारी अफ्तारी करवाते हैं, बेगानेपन वाली बात थी वो अब नहीं है, अपनायत ज़्यादा हो गई है।
मलेरकोटला के नवाबों का खूबसूरत मुबारक महल अब खंडर में बदल चुका है। शाही खानदान की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन नवाब शेर मोहम्मद खान की इंसाफ पसंदी के किस्से अभी बाकी हैं। सुहेल हलीम, बीबीसी मलेरकोटला।
और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवेश परीक्षा और नियुक्तियों में भर्ती घोटाले में सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश की है। एक स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर की आकस्मिक स्थितियों से निपटने में अक्षम है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख फेडरिका मोगेरिना ने कहा है कि परमाणु समझौते पर ईरान से बातचीत समय सीमा के बाद भी जारी रहेगी। इस मामले में समय सीमा आज रात खत्म हो रही है। ग्रीस में जारी आर्थिक संकट को लेकर ब्रसल्स में एक बैठक हो रही है जिसमें ग्रीस को कर्ज वापसी पर एक नई योजना पेश करनी है। और उत्तरी नाइजीरिया में अधिकारियों का कहना है कि जारिया शहर में हुए संदिग्ध आत्मघाती हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
समाचार पेश कर रहे थे फैसल मोहम्मद अली और स्टूडियो संभाला था कुणाल शर्मा ने। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में, लेकिन bbchindi.com हमारी वेबसाइट 2400 घंटे सातों दिन आपके साथ है।